प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। आइए मुंबई प्रेमपुरी के नित्य स्वाध्याय प्रवचन में प्रश्नोत्तरी पहले उच्चारण कर ले। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वगैत विशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका बद्धो हि कोयो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः कोवास्ति घोरो नरक स्वदेह कोवाशय स्वर्ग पदम किमस्ति संसार हृत्क श्रुति जात्म बोध को मोक्ष हेतु कथित सैव द्वारम किमेकम नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राणभृता महिंसा सेते सुखं कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्ति को वा सदसद्विवेकी केशत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्नेव मित्राणि जितानि यानि को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णा श्रीमाश्च को यस्य समस्ततोषः जीवन्मृत कस्तु निरोध्यमोय किंवामृतम् स्यात् सुखदा निराशा। आइए तीसरे श्लोक पर विचार चल रहा है। संसार हृत का श्रुतिजात्म बोधः प्रश्न किया आचार्य शंकर से शिष्य ने कि संसार को हरने वाला कौन है। तो उत्तर क्या दिया, श्रुतिजात्म बोधः। एक होता है भूत भौतिक बोध, जिसको बोलते शास्त्रीय भाषा में वृत्त्यात्मक ज्ञान, और आप बोलते भूत भौतिक ज्ञान, अनात्म ज्ञान, सब एक ही चीज है। और दूसरी तरफ है औपनिषद प्रतिपाद्य, श्रुति प्रतिपाद्य, जो आत्मज्ञान। तो संसार को हरने वाला श्रुति से जो प्रतिपाद्य आत्मज्ञान है वही है। संसार क्या है, आपने श्रवण कर लिया, संसार है सम्यक प्रकारेण संसरतीति संसार, जो हमेशा संसरण कर रहा, क्रियाशील परिवर्तनशील, उसका नाम संसार है। संसार का मूल है अविद्या, अविद्या से कामना, कामना से वासना, वासना से कर्म, कर्म से सुख दुख फल, और सुख दुख से पुनः आसक्ति, यही संसार है। तो संसार का मूल है अविद्या। तो अविद्या का ध्वंसक नाशक औपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान है, और जो यह औपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान है स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का मतलब होता है साधन निरपेक्ष, किसी साधन की अपेक्षा नहीं। साधन तो सिर्फ आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है, अंतःकरण के शुद्धि का केवल ये उपाय है। जितने भी साधन है, श्रवणादि उपासनाएं हैं, तो संसार की जब परिभाषा समझ लेंगे तो अपने आप संसार के उच्छेद का उपाय भी आ जाएगा। ये संसार जो वृक्ष है, यह संसार वृक्ष बहुत ही बड़ा है, इसका मूल जड़ है मन। ये जो मूल जड़ है इसका नाम मन है, मन से ही संसार भाव को प्राप्त आपने किया। अशुद्ध मन से संसार भाव को आपने प्राप्त किया और उसी शुद्ध मन से संसार का नाश होता है। आप बार बार सुनते हैं कि यत मनसा न मनुते इन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम तदिदम उपासते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वासना से वासित जो मन है, जिस मन में मलिन वासना है, मुक्ति को परिषद में ये बात आती है कि वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा मलिना जन्म हेतु स्यात् शुद्धा जन्म विनाशिनी। मुक्ति को उपनिषद का अंतिम श्लोक है। वासना दो प्रकार की है, एक है शुद्धा वासना, दूसरा मलिना वासना। शुद्धा वासना बोलते हैं जो शास्त्र के द्वारा जब वेदांत का श्रवण करते हैं और श्रवण के बाद जब मनन होता है उसका नाम है शुद्धा वासना। जो शुद्ध ब्रह्म है तद विषयक जो हमारी मनोवृत्ति, इसका नाम शुद्धा वासना। इसी को परिषद में कहा मनसैव अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन। वही मन है, दो चीज नहीं, एक ही मन। अच्छा, मन का उपादान कारण क्या, मन कैसे बनता है आप जानते हैं? मन, मन किस माटी से बना, किस मिट्टी से? हाँ, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक समष्टि अंश, इतना बोलना। जैसे हमारी उंगलियां पांचों अलग अलग है, ऐसे ही जो पंचभूत हैं अभी उनका पंचीकरण नहीं हुआ है। आकाश का सात्विक अंश, वायु का सात्विक अंश, तेज का सात्विक अंश, जल का सात्विक अंश, पृथ्वी का सात्विक अंश, पांच भूतों के सात्विक अंश को लेकर बनाया, उसको बोलते अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण बना। एक ही अंतःकरण के कार्य से चार नाम पड़ गए। आदमी एक ही है, जब करता वकालत तो वकील साहब, दवाई दे तो डॉक्टर साहब, अब पढ़ाए तो मास्टर साहब, और जो है ना पंडिताई करे कर्मकांड तो क्या बोलेंगे, पंडित साहब, साहब नहीं बोलते, पंडित जी बोलते हैं, पंजाब में परिपूर्ण पंडित शब्द है। ये पंडित शब्द किसी जाति का वाचक नहीं, हाँ ब्राह्मण तो जाति का वाचक कह सकते हैं, पर हाँ नहीं, पर जाति वाचक नहीं है। ये पंडित शब्द का अर्थ किया है व्याकरण में सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा, ये लघु कौमुदी में आएगा तद्धित प्रकरण में, कि सद असद विवेचनी बुद्धि का नाम पंडा, सा अस्या अस्तिति पंडितः। यह सत है असत है, इस बात को जो बुद्धि विवेचन करे उसका नाम पंडा है, और पंडा जिसके पास उसका नाम पंडित है। तो पंडित आप सभी हैं, स्त्री भी पुरुष भी कोई भी हो सकता है, शूद्र भी सभी हो सकते हैं। तो पंडित शब्द आपका एक जो है ना विशेषण से विशिष्ट शब्द है, और जाति शब्द औपाधिक है। जो आपने कहा ना ब्राह्मण, ये ब्राह्मण औपाधिक शब्द है। ब्राह्मण शब्द की परिभाषा क्या, निरुक्तकार यास्क ने कहा, यास्क ने, कि ब्रह्म नाम वेद, ब्रह्म वेद तद अध्ययनार्थम व्रतम चरत इति ब्राह्मण। भाष्यकार ने अर्थ किया कि ब्रह्म जिज्ञासव ब्राह्मण, जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण। तो प्राचीन काल में लगभग ब्राह्मण वर्ग ब्रह्म जिज्ञासु ही होते थे, वेदाध्ययन ही करते थे, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में आया है विशेष्यात तद्वाद तद्वाद। एक गांव में 60 ब्राह्मण का घर है और 4 इतर समाज है, तो क्या बोलते ब्राह्मणों का गांव, विशेष्यात तद्वाद तद्वाद, जिसमें जिसकी अधिकता होती है उसको उसी नाम से पुकारते हैं। तो प्राचीन साहित्य में ये ब्राह्मण शब्द या पंडित शब्द ये सब औपाधिक विशेषण से विशिष्ट शब्द है, पर आजकल तो आप एक जाति से जोड़ लेते ना तो गड़बड़ झाला हो जाता। भाई आपके पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सर्जक हैं, ठीक है, पर आपकी पत्नी को बिल्कुल कुछ दवा देने नहीं आता है, बेटा को नहीं आता, पोता को नहीं आता, फिर भी व्यवहारिक जगत में बोलते हैं ना कि ये जो है ना डॉक्टरनी है, उसको आता नहीं, फिर भी बोलते हैं, क्योंकि पति का जो अपना उपाधि है उसका प्रयोग पत्नी बोलते हैं, डॉक्टर डॉक्टरनी, बेटा क्या बोलते हैं, डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर का पोता, बोलते कि नहीं। परंतु यह जो डॉक्टर सब उपाधि है, ऐसे ही यहां पर भी ब्राह्मणादि जो वर्ण है औपाधिक, एक उपाधि को लेकर, इसको भगवान ने गीता में कहा गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के विभाग से चातुर्वर्ण्य मया सिष्टम। तो ये जो हमारा मन है, ये मन ही संसार का कारण है, और मन में वासना दो प्रकार की होती, एक होती मलिना वासना, और मलिना वासना स्वाभाविकी है अनादिकाल से। मलिन वासना बोलते हैं कि जो संसार विषयक, जो भूत भौतिक विषयक जो ज्ञान है, और ज्ञान के बाद जानाति इच्छति यतते करोति, सामान्य नियम है, किसी भी चीज का सबसे पहले आपको ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद आप अपने मन में इच्छण करते हैं कि ऐसा मैं करूं या न करूं, और कार्य के संपादन में भी जो है ना 4 उसके हेतु है, मतलब कि इष्ट साधनता का ज्ञान होना चाहिए, मतलब मेरे कल्याण का साधन है, मदिष्ट साधनम ज्ञानम, ऐसा हो तब प्रवृत्ति होगी। किसी भी कार्य के ज्ञान मात्र से बात नहीं बनती, ज्ञान तो है कि चंद्रमा बहुत अच्छा है, परंतु उसमें कृति साध्यता नहीं है, हमारे प्रयास से चंद्रमा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इष्ट साधनता का ज्ञान कृति साध्यता और चिकित्सा और अपर्युदस्त, ये जब 4 चीज होगी तब जाकर आपकी प्रवृत्ति होगी। अपर्युदस्त बोलते हैं कि निषेध नहीं होना चाहिए, जैसे आप राजा हैं, समर्थ हैं, सब कुछ हैं, परंतु आपके पास पुत्र नहीं है तो आप राजस्व यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि नियम है पुत्र होना चाहिए तब राजस्व यज्ञ कर पाएंगे। तो निषिद्ध भी नहीं होना चाहिए, अपर्युदस्त मतलब अधिकारी होना चाहिए, तो अपर्युदस्त मतलब कि अधिकारी उस कार्य का, और कीर्ति साध्य बोलते जो हमारे परिश्रम से प्राप्त हो, चिकित्सा बोलते करने की इच्छा, आपको करने की इच्छा नहीं तो भी प्रवृत्ति नहीं होगी, और सबसे पहला इष्ट साधनता का ज्ञान, इष्ट मतलब हमारे कल्याण का साधन है, तो इष्ट साधनता का ज्ञान कृति साध्यता चिकित्सा और अपर्युदस्त, ये 4 जब आपके पास होंगे तब जाकर किसी काम में व्यवसाय में व्यापार में आपकी प्रवृत्ति होती है। तो हमारे मन में जो मलिन वासना स्वाभाविक है अनादिकाल से है, यह जो विषय विषयक वासना है मलिन वासना, यह वासना संसार का कारण है, और यह वासना संसार में बांधकर रखती। और जब तक आपको किसी काम में श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, तब तक आप लगते भी नहीं। उस काम में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो ज्ञान के बाद आपको उस कार्य में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तब जाके आपकी प्रवृत्ति होती है। तो यदि आपके जीवन में संसारबद्ध श्रद्धा है, श्रद्धा दो तरह की, वैसे गीता में तीन बताया पर दो भाग करना, एक है संसारबद्ध श्रद्धा, दूसरी है वेदांतबद्ध श्रद्धा। तो संसारबद्ध श्रद्धा आपको दुख देगी। इतनी श्रद्धा संसार में, भगवान ने कहा न त्रिविधा भवती श्रद्धा, देही नाम सा स्वभावजा। स्वाभाविक तीन श्रद्धा है, सात्विक, राजस, तामस। तो जो राजस और तामस श्रद्धा है, उस श्रद्धा को बोलते संसार विषयणी श्रद्धा, विश्वास। हम लाख मना करें भाई, प्रातः काल उठकर कम से कम थोड़ा संध्या वंदन कर लो, भगवत नाम ले लो, ध्यान कर लो, सत्संग सुन लो। चूंकि आपके मन में सात्विक श्रद्धा न होने से माता पिता बड़ों की बात का असर नहीं पड़ता। समय है, आपको नहाने का टाइम मिल जाता, चाय पीने का भी समय मिल जाता। जितना समय चाय पीने में लगता है, उतना समय संध्या में लगता है, मुश्किल से 10-12 मिनट। चूंकि हमारे मन में श्रद्धा नहीं, इसलिए रुचि नहीं होती है। और बिना रुचि बोलते चिकित्सा, बिना रुचि के उसमें आप प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो यह जो मलिन वासना है, इस मलिन वासना से संसार में श्रद्धा बद्ध हो जाते हैं। तो जब आप संसार बद्ध श्रद्धा वाले होंगे तो संसार में प्रवृत्ति होगी। जैसे किसी पशु का, कुत्ता बिल्ली गाय का आप गर्दन रस्सी से बांध देते हैं, अब बांधने के बाद इधर रस्सी खींचो उधर वह जाएगा। ऐसे ही अमूर्त रूप से, मूर्त रूप से नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा, परंतु हमारे अंतःकरण में एक ऐसी संसार से श्रद्धा बंध गई है कि बार बार शास्त्र कहता भाई अपना कल्याण करो, आत्मचिंतन करो, पर चूंकि आप संसार बद्ध श्रद्धा होने से वेदांत चिंतन कर नहीं पाते। जब पशु के गले में रस्सी बांध देते हैं, उसे पशु कितना दुखी होता है। मान लो मालिक भूल गया तो बेचारा दिन भर भूखे प्यासे पड़ा रहता है। ऐसे हम लोग भी हैं। यदि संसार बद्ध श्रद्धा होगी तो आप संसार में उलझे रहेंगे, और संसार में जो है वही मिलेगा। संसार के पास है दुख, अशांति, बेचैनी और कलह, यही मिलेगा। और यदि आपने महापुरुषों की बात सुनी, उस पर अमल किया, तो वेदांत बद्ध श्रद्धा उत्पन्न होगी। दोनों बंधन है। कठोपनिषद में कहा श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत् तौ उभे सिनीत। सिनीत का अर्थ है सिंह, बंधने से सिनीत बनता है, सिंह बंधने धातु है। श्रेय प्रेय दोनों श्या बधे हैं। प्रिय बोलते हैं जो प्रियतर हो, देखने में सुनने में समझने में बड़ा प्रिय लगता है, पर पास जाओ तो वह दुखी करता। तो प्रिय से भी आप बंधे हैं, अब श्रेय से भी। तो प्रिय तो संसार में उलझा कर रखता, पर श्रेय जो बंधन है वह संसार के बंधन से छुड़ाता है। इसी को मुक्ति को उपनिषद में वेदांत बद्ध श्रद्धा कहा, जिसको कहते हैं सात्विक वासना, शुद्ध वासना। तो शुद्ध वासना होगी तो आपको जगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आंख खुल जाएगी 4 बजे। जैसे कि जगत की वासना हो तो व्यापारी अपने आप 4 बजे उठ जाता है, उठकर तुरंत नहा धोकर दुकान के शटर खोलने में लग जाता, वो कहता चाय बाद में पिएंगे, चलेगा, क्योंकि उसे पता ग्राहक आने वाले हैं। ऐसे जीवन में यदि शुद्ध वासना, जिसको बोलते सात्विक वासना, शास्त्रीय वासना होगी, जिसको मुक्ति को परिषद ने कहा वेदांत बद्ध श्रद्धा, यह जब होगी तो आप वेदांत चिंतन में लग जाएंगे। तो संसार का मतलब होता है ये जो मन रूपी वृक्ष का नाम ही संसार है, अस्य संसार वृक्षस्य मनोमूलमिदं स्विद, संसार वृक्ष का मन ही मूल है। अब मन में क्या होता है, संकल्प विकल्प होता है, संकल्प एव तन मन्ने संकल्पोपशमेन तत, मुक्ति को उपनिषद का यह मंत्र है कि संसार रूपी वृक्ष का मनोमूलम इदम चितम, मन ही मूल है, और संकल्प एव तन मन्ने, संकल्प उसका कारण है। जब आप शुद्ध संकल्प करते हैं, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, इसी का नाम शुद्ध श्रद्धा। तो हमारे मन में संकल्प विकल्प अपने आप चलते हैं, पर यदि आपने अपने मन में शिव संकल्प किया, जस्मान नरिते किंचन कर्म क्रियते, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हम बोलते हैं ना, संकल्प का बड़ा भारी प्रभाव है। कहते एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा, न्याय प्रिय, उसे अच्छी कला ध्यान की प्राप्ति। राजा योग समाधि के द्वारा दूसरे के मन की बातों को जान लेता था। ये बात बार बार योग दर्शन में, शास्त्र में और देवताधिकरण में भी आया ब्रह्मसूत्र में, कि देवता लोग दूसरे के मन की बात जान जाते। क्यों जान जाते? इसलिए जान जाते कि हमारे मन का संबंध प्राण से, और प्राणो है ब्रह्म। जब आप संवादी भ्रम या संपत उपासना करते, प्राण की प्राणो है वही ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है, और प्राण का पवन की एकता है, अभेद है, और पवन देवता देवताओं को बता देते तो सब कुछ जान लेता है आदमी। तो राजा भी दूसरे के मन की बात जानते थे। उनके राज्य में एक चंदन का व्यापारी था। वो बैठे बैठे रात को सोचता और पत्नी से बोलता कि देवी, राजा बूढ़ा हो गया है और भगवान करे जल्दी स्वर्ग का निमंत्रण आ जाए तो माला माल हो जाएंगे, लाखों टन चंदन की लकड़ियां बिकेंगी अंत्येष्टि क्रिया के लिए। तो रानी क्या बोल, वो क्या बोलती चंदन व्यापार की सेठानी, अरे रानी भी तो मरेगी, जब राजा मरेगा तो उसके दुख में वो तो छाती पीट के मर जाएगी, फिर तो हम अरबपति हो जाएंगे, बेटा क्यों किसी से कम। बेटा बोला कि भाई, मैंने सुना है कई बार पुरानी दीवारें तो रहती, नई दीवारें गिर जाती है। जब भूकंप आया ना, देखा कैलाश में 90 में, तो पुरानी दीवार तो वैसी, नई बिल्डिंग में दरार पड़ गया। ऐसा कई बार होता, पुरानी जो कारीगरी बहुत मजबूत होता, उसमें जल्दी नहीं आता दरार। तो उसने कहा कि राजकुमार भी तो मरेगा, फिर तो हम भारत का नंबर 1 सेठ बन जाएंगे। ये हर दिन आपस में गप करते। राजा ने अपने ध्यान समाधि से जान लिया कि हमारे अमंगल की भावना करते। सेनापति को ऑर्डर दिया, जाओ फला चंदन के व्यापारी को सब परिवार पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया। राजा ने कहा इसे अभी कारागृह में डाल दो, बड़ा भारी अपराधा है, अपराधी है, पूरा परिवार अपराधी है। लगा रोने, महाराज मैं तो कुछ भी नहीं अपराध किया, किसी को हमने मारा नहीं, पीटा नहीं, लूटा नहीं, छीना नहीं, इतना कठोर दंड आप क्यों दे रहे हैं। राजा ने कहा पहले इसको कारागृह में डाल दो, फिर विचार करेंगे। तीन दिन तीन रात सब परिवार चंदन का व्यापारी जेल में रहा। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, मंत्री सोचा हमारे राजा साहब बड़े न्याय प्रिय हैं, बिना अपराध के दंड दे नहीं सकते। कारागृह में गया और उस सेठ से पूछा बताओ कि आपने कौन सा ऐसा अपराध किया। बोला कुछ अपराध तो नहीं किया, हां घर में शाम को बैठकर आपस में चर्चा किया करते थे कि राजा मर जाए तो इतनी लकड़ी बिक जाएगी, माला माल हो जाएंगे, रानी मरेगी तो इतनी लकड़ी बिकेगी तो हम नगर सेठ हो जाएंगे। तो बेटा बोला कि राजकुमार मर जाए तो हम पूरे देश के सेठ बन जाएंगे, पूरा नाम हमारा हो जाएगा। बोले बस ये तुम्हारा अपराध है। इसको बोलते नकारात्मक चिंतन। यह जो नकारात्मक संकल्प है इसी संकल्प के कारण से तुम्हें दंड मिला। अब ऐसा करो तुम सकारात्मक संकल्प करो। उस सेठ ने पूछा बताओ महाराज क्या सकारात्मक संकल्प। मंत्री महोदय ने कहा कि अब बैठे बैठे चिंतन करो, हे भगवान राजा के दरबार में यज्ञ हो याग हो जिसमें लकड़ियां हमारी बिकेंगी तो मैं माला माल हो जाऊंगा, माला माल तो राजा के मरने से भी होंगे और यज्ञ याग से भी होंगे, पर यज्ञ याग सकारात्मक चिंतन, यज्ञ में हमारे लकड़ियों से यज्ञ मंडप का निर्माण होगा, हमारे लकड़ियों से मेज कुर्सियां खिड़की खिलौने बनेंगे तो मैं माला माल हो जाऊंगा, ऐसा तुम चिंतन करो। देखो चिंतन दोनों ही है। हम लोग मलिन वासना से नकारात्मक चिंतन करते हैं, असन्नेव सभवति असद ब्रह्मेति चेद वेद। आप लोग उपनिषद में सुना जो असत का चिंतन करता है, असत नाम है संसार का, वांत में असत भाव को प्राप्त हो जाता। संत मेनम ततो विदु यह सद ब्रह्मम चिंतयति। वह संत है, सज्जन है, महापुरुष है, महामानव है जो सब महान तत्व का ब्रह्म का चिंतन करता है। तो चिंतन का बड़ा भारी प्रभाव हमारे जीवन इंद्रिय समाज परिवार पर पड़ता है। तो उस सेठ ने जेल में ही राजा के मंगल का चिंतन करने लगा कि यज्ञ हो याज्ञ हो शादी ब्याह हो सत्कर्म हो तो लकड़ियां बिकेंगी तो मैं माला माल हो जाऊंगा। ये हो गया आपका शुद्ध संकल्प, शिव संकल्प। राजा ने कहा भाई छोड़ दो। तो हमारे जीवन में ऐसा ही होता, यदि हमारे चित्त में यदि मलिन वासना है तो आप संसार के चिंतन में उलझे रहते हैं और क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास सारे संसाधन फिर भी जीवन में कोई उल्लास नहीं, उमंग नहीं, कोई आनंद नहीं, क्योंकि संसार के पदार्थों का स्वभाव क्या स्वभाव है, ये संसार क्षणिक है, विनाशी है, नश्वर है और दुखमय है और परमात्मा सुखमय है। यदि हम सत संकल्प करें कि तन में मन शिव संकल्प मस्तु, तो जो मन आपको संसार में बांध के रखा है वही मन आपको मोक्ष भी दिला सकता है। करना कुछ नहीं, केवल आपको चिंतन बदलना है। जैसे चंदन व्यापारी नकारात्मक चिंतन करता था तो कारागृह मिल गया, और वही जेल में बैठकर सकारात्मक चिंतन किया तो मोक्ष हो गया, जेल से छुटकारा हो गया। ऐसे ही हम लोग भी प्रारब्ध कर्मानुसार संसार रूपी कारागृह में आए हैं, बैठे हैं। अब यहां पर आने के बाद यदि हम नकारात्मक चिंतन करेंगे तो पुनः जन्म और मृत्यु रूपी भवरोग को प्राप्त हो जाएंगे, और यदि यहां पर आकर आप सकारात्मक चिंतन करें, शिव संकल्प करें, तो निश्चित यही मन आपको मोक्ष भी दिलाएगा। वही बात कहा, यह जो वासना युक्त मन है, जिसको कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः, वासना से वासित, वासना बोलते हैं देखो वस निवासे धातु है, वस निवासे, और ल्यूट पढ़ते हो गया आपका भाव में, दोनों में होता है, भाव में करण में दोनों होता है। यहां पर करण में करना, करणाधिकरणियों से करण में होता है, हलश्च से अनिशुद्ध से होता है आपका भाव में, यहां करण में करना। तो ये जो हमारा मन है यदि संसार में निवास करता है तब बोलेंगे वासना, और यही मन परमात्मा के समीप निवास करे तो बोलते उपासना। तो उपासना से परमात्मा की प्राप्ति। पर हम लोग एक दुराग्रह करते, दुराग्रह, तत्व ज्ञान का तीन प्रतिबंधक महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन ने बताया। पहला प्रतिबंधक है बुद्धिमांद्य, दूसरा है विषयाशक्ति, और तीसरा है दुराग्रह। दुराग्रह मतलब कि किसी चीज में आग्रह कर लेना। तो बुद्धिमांद्य तो आप लोगों का है नहीं, बहुत पढ़े लिखे साक्षर हैं, वेदांत की कथा सुनते, बुद्धिमान्य तो हो नहीं सकती। थोड़ी थोड़ी विषयाशक्ति हो सकती, पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। परंतु तीसरा दोष है दुराग्रह। जो दुराग्रह है ना, दुराग्रह को छोड़ना। यह जो दुराग्रह है, जैसे वो कहते हैं ना, एक थे सेठ जी, तो सेठ जी अपने बेटे को समझाते, देख बेटा बहुत बड़े सेठ हैं, खानदानी सेठ हैं, बड़ा हमारा नाम है, सात पीढ़ी से जो है ना हमारे घर में बड़ा भारी लक्ष्मी की कृपा है, इसलिए तू ये जो है ना बाजार में घूमता, इधर उधर देखता ताकता, अच्छी बात नहीं, ऐसा है मैं तेरा ब्याह बहुत अच्छी बहू से करवा दूंगा, तो रात को बीच बाजार में घूमना फिरना देखना ताकना बंद कर दे। सेठ का बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा था, वो जो है ना इंग्लैंड से पीएचडी करके आया था, किसमें मालूम, व्यवसाय में, कॉमर्स में। कहा पिताजी आपके बात बिल्कुल सही, मुझे ही पता कि हम खानदानी सेठ हैं, कुलीन हैं, अच्छे हैं, परंतु आप पहले हमारा ब्याह अच्छी किसी खानदानी लड़की से करा दो, फिर मैं बिल्कुल बाजार में घूमना फिरना बंद कर दूंगा, आराम से घर में बैठूंगा, जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा। सेठ जी ने कहा भले मानस, पहले तू अपने आप को तो सुधार, जब तू दिन भर बाजार में घूमता रहेगा तेरी बदनामी फैल चुकी है कि ये तो बिगड़ा हुआ लड़का है, दिन भर घूमता रहता, तो मच्छी अपनी बेटी कौन देगा। बोले कि हमारी बेटी को ये दुखी कर देगा, कोई देने वाला नहीं। वही बात हमारी है, परमात्मा तो सेठ है, या महापुरुषों को सेठ की जगह मान लो। आपको समझाते हैं कि भाई वासना को छोड़ो तब उपासना अपने आप होगी, पर हम क्या कहते हैं कि हे भगवान, हे मतलब महात्माओं से प्रार्थना करते, हे गुरुदेव आप ऐसी कृपा करो कि हमारी इच्छा ये पूरी हो जाए, घर में खूब लक्ष्मी की वर्षा हो, अच्छा कारोबार चले, व्यापार चले, व्यवसाय चले, इसके बाद मैं भी प्रेम पूरी आकर इस तीर्थ में गोता लगाऊंगा। आप बोलते ना, इसी का नाम है वासना। भाई जब तक सेठ का लड़का बाजार में घूमना नहीं बंद करेगा, बदनामी दूर नहीं होगी, तब तक अच्छी बिटिया कौन देगा? उसे कोई नहीं देगा। ऐसे हम भी जब तक अपने मनोवृत्तियों को जो संसार के बीच बाजार में हमें घुमा रही, भटका रही, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, कभी शब्द में, तो जब तक वहां से अपने आप को नहीं हटाएंगे, तब तक ठीक से उपासना नहीं होनी। और जब तक उपासना नहीं करेंगे, तब तक आत्मोद्धार नहीं होगा। वेदांतिक उपनिषद में बताया कि आप दुनिया नहीं, पूरे ब्रह्मांड का माला माल कैसे हो सकते? आप सोचते हैं ना, मैं पूरे ब्रह्मांड का मालिक बन जाऊं, माला माल बन जाऊं। तो उपाय बताया, पहला सूत्र दिया कि आप क्या करो, आत्म काम हो जाओ, आत्मा की कामना करो, ईश्वर की कामना करो। कमु कांतौ धातु से कामना बनता है, कांति नाम है इच्छा। तो आप जो इच्छा करते हैं वहां क्या करना, आत्मा की इच्छा करना, तो मुझे आत्मज्ञान हो, परमात्मा का दर्शन हो। इसके बाद कहते अकाम, कामना से शून्य होते हैं। फिर आप्त काम, सारी कामना पूरी हो जाती है। इसके बाद है शोकानंतरम, शोक सागर से पार। आप दो ही चीज का चाहते हैं ना, कि मैं संसार में भी रहूं और शोक सागर से पार भी हो जाऊं। आप संसार के सामग्री को छोड़ना भी नहीं चाहते और शोक सागर से पार भी। ये संभव है। कब संभव है? जब हमारे जीवन में आत्म कामना हो जाए। आत्म काम, अकाम, आप्त काम, शोकानंतरम, ये उपनिषद का मंत्र है, वेदांतिक उपनिषद का। तो कामना करनी बुरी बात नहीं, पर हमें कामना करनी है, आप मजबूर हैं कामना करने के लिए, लाचार हैं, तो आत्म काम मतलब परमात्मा भगवत प्राप्ति की कामना करें। जब घर में भगवान आ जाएंगे, नारायण आ जाएंगे, तो लक्ष्मी तो महाराज झक मार के आएगी। आप दीपावली में वो कथा सुनते ना बार बार, बलि महाराज की, कि जो है ना बलि महाराज को भगवान गए थे छलने, स्वयं भी चले गए, भगवान द्वारपाल बन गए। बेचारी लक्ष्मी परेशान, नारद जी से पूछी, बताओ इस समय हमारे पति देव श्रीमन नारायण कहां? नारद जी बड़ा परिहास किए, बोले तुम तो घरवाली, हमें क्या पता? भाई घरवाली को पता होता है श्रीमान जी कहां, मैं तो तुमसे पूछने आया। बोले मैं तो 6 महीने से परेशान। नारद जी बोले देखो इस समय पाताल लोक में बलि महाराज के यहां द्वारपाल बने हुए हैं। अब तो बिताए लक्ष्मी जी माथा पकड़ के बैठ गई, बोली महर्षि कोई उपाय बताओ, क्योंकि नियम है नारम ददाति नारद, नार बोलते ज्ञान को, तो जिसको नारद जी मिलते ना उनको जरूर ज्ञान मिल जाता, तो आपको सारा ज्ञान बताओ कैसे उनसे मिलना होगा। सारा उपाय बता दिया कि अच्छा मुहूर्त है, तू कल चले जाना और राजा बलि को अपना भाई बना ले। जब भाई बना लेगी तो कहेंगे वरदान मांग तो मांग लेना नारायण को, यही उपाय है। तो जीवन में आत्म काम होंगे, भगवत काम होंगे, तो झक मार कर लक्ष्मी जी आई जाएगी, तो फिर आप्त काम हो जाएंगे, फिर सारी कामना पूरी हो जाएगी, शोक सागर से पार। पर गड़बड़ जानते क्या होता है कि हम जो है उस सेठ के बच्चे के समान ये मलिन वासना को छोड़ना नहीं चाहते। पहले आपको मलिना वासना को छोड़ना है, फिर अपने आप शुद्ध वासना उपासना चित्त में प्रकट हो जाएगी, वही परमात्मा से मिलाएगी। तो आगे देखिए, संसार हित का स्फुतिजात्म बोध। बोध कैसा हो? भूत भौतिक बोध नहीं। आप जो संसार में ज्ञान हासिल करते हो, इस ज्ञान का नाम है भौतिक ज्ञान, अनात्म ज्ञान। वेदांत में कहते हो वृत्त्यात्मक ज्ञान। और यह जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब त्रिपुटी की अपेक्षा करता है, ज्ञाता होना चाहिए। ज्ञाता बोलते हैं अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम है ज्ञाता। अंतःकरण के परिधि में जो चैतन्य का प्रतिफलन है उसका नाम है ज्ञाता। और विषयावच्छिन्न चैतन्य को बोलते हैं ज्ञेय, क्योंकि विश्वम ब्रह्म, ये पूरा संसार चिन्मय है। तो विषयावच्छिन्न चैतन्य का नाम ज्ञेय है। और जो विषय और अंतःकरण के बीच में जो धारा चल रही, जिसको बोलते हम प्रमाण या ज्ञान, ध्यान, इन शब्दों से बोलते, उसका नाम है आपका प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य। जब ये तीनों एक धरातल पर आते हैं तब जाकर ज्ञान होता है। तीनों एक साथ होना चाहिए। जैसे मान लो हलवाई के दुकान में मिष्ठान रखी हुई है, तो हलवाई के दुकान के जो मिष्ठान है, सुंदर सुंदर मिठाइयां हैं, आंख से देखते तो आंख तो वहां तक चली जाती। नियम है आंख हमारी विषय देश तक जाती है। कान में दोनों मत है, विषय देश में कान जाता भी है और विषय भी कान के पास आते हैं, दोनों मान्यता है। पर जीभ महारानी बिल्कुल नहीं जाती। जीभ चली जाए हलवाई के दुकान में ना, तो सब चट हो जाएगा, सब झूठा हो जाएगा, जीभ नहीं जाती। जीभ के पास आप मिष्ठान को लाते हैं। तो आपने पहले मन में संकल्प किया मिठाई अच्छी खानी चाहिए, अंतःकरण में संकल्प हुआ, इच्छा हुई, इसके बाद हाथ से आपने मिठाई को उठाया तो करण हाथ हो गया, जीभ पर रखा, तब जाकर ज्ञान हुआ इसका मिठास कैसा है, स्वाद कैसा है। तो उस भूत भौतिक ज्ञान के लिए त्रिपुटी बहुत आवश्यक है। तीनों में से एक न हो तो बात बिगड़ जाएगी, अंतःकरण इधर उधर तो भी बात नहीं बनेगी। यदि आपका मन कहीं और है, मैं बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्या बोलेंगे? अन्यत्र मना भुवम ना श्रोषम ना दृष्टम। मेरा मन कहीं और गया था, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोली तो मन भी चाहिए। इसके बाद आंख भी ठीक से होना चाहिए, कान भी काम करना चाहिए और विषय भी चाहिए। इसमें बहुत पराधीनता है। भूत भौतिक ज्ञान में, पदार्थों की प्राप्ति में बिल्कुल पराधीनता ही पराधीनता है। स्वाधीन है नहीं आप, पराधीन है। कोई बच्चा बहुत प्यारा है, आप उससे मीठी मीठी बात करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते, तो आपके पास आंख भी होना चाहिए, मन भी साथ देना चाहिए और वह बालक भी होना चाहिए। तीनों में से एक यदि नहीं हुआ तो बात नहीं बन पाएगी, सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, कितनी पराधीनता। परंतु जो आत्मज्ञान है यह स्वाधीन है, इसमें किसी की अपेक्षा नहीं। जिस प्रकार से आपको जोर से भूख लग गई, प्यास लग गई, तो भूख प्यास स्वसंवेद्य है, किसी की अपेक्षा नहीं। जैसे भूख प्यास स्वसंवेद्य है, ऐसे ही आत्मज्ञान स्वसंवेद्य है, किसी की अपेक्षा नहीं, आपको स्वतः अनुभव होता है हमें इतनी भूख जोर से लगी, इतनी प्यास लगी है। ऐसे ही जब आप बार बार शास्त्रों को सुनते हैं तो मनसैव अनुद्रष्टव्यम निह नानाति किंचन, उस शुद्ध मन के द्वारा उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए कहा कि भाई अपने मन को शुद्ध करना, पर मन शुद्ध कहां पर होगा? मन शुद्ध होगा सत्संग में, स्वाध्याय से, आत्म मंथन से। जिस प्रकार कोई कपड़ा बहुत मलिन हो जाता है तो उस वस्त्र को आप बार बार साबुन लगाते हैं, पानी डालते, फिसती फिर जाकर साफ हो जाता है। ऐसी हमारा मन लाखों जन्मों का सुसंस्कार है, मन में हजारों लाखों जन्मों की संस्कार हमारे मन में पड़े हुए हैं। वे संस्कार कैसे हैं? तो वासना के संस्कार। कल्पना करो, हम लोग बंदर बने होंगे, बंदरी बने होंगे, हाथी भी रहे होंगे, सिंह बने होंगे, देवता बने होंगे। तो देवता योनि जो भोग प्रधान है, उन जन्मों के सारे जो संस्कार है हमारे चित्त में पड़े हुए हैं। इसलिए शास्त्रों में एक बड़ा बड़ी अच्छी युक्ति बताई, बहुत अच्छी युक्ति, वैज्ञानिक है, बहुत कारगर युक्ति है कि अपने मन को अवसर दो ही ना, न दद्यात अवसरम मनागपि, मनाग बोलते थोड़ा। जैसे कि आपके घर में बड़ा सुंदर कीमती बीज रखा हुआ है और वह बीज पड़ा रहे, ऐसे पड़े पड़े बीज गल जाता, सड़ जाता, ऐसे यदि आप आसुप्ते आमृते नएत विदान चिंतया, ये युक्ति है, युक्ति से मुक्ति। जब आप बार बार वेदांत का चिंतन करेंगे, आत्मा अनात्मा का विचार करेंगे, उससे मन उब गया तो थोड़ा जप कर लिया, जब से उब गए तो थोड़ा ध्यान कर लिया, ध्यान से थक गए तो थोड़ा परिक्रमा कर लिया। अपने मन को यदि आप भगवान के भक्ति में, भजन में, चिंतन में लगाए रखेंगे तो हजारों जन्मों का जो संस्कार है ना मन में, अपने आप पड़े पड़े वो दग्ध हो जाता, सड़ जाता, नष्ट हो जाता, हाँ जो भी पड़ा हुआ संस्कार है। पर यदि आप अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति करने चलेंगे, भाई ये इच्छा पूरी कर लो फिर भजन करेंगे, इच्छा तो पूरी होनी नहीं बल्कि आप ही पूरी हो जाते। इसलिए कहा कि भाई आसुप्ते आमृते नएत कालम वेदांत चिंतया, आपका समय तो अपने आप जा ही रहा। जैसे कि कल कौन दिन था? शुक्रवार। शुक्रवार आज के लिए सपना हो गया। शुक्रवार के दिन जो भी आपने देखा, सुना, समझा, आज के सपना हो गया। ऐसी हमारी पूरी जिंदगी एक दिन सपना हो जाना है। परंतु शुक्रवार को आपने जो श्रवण किया, जो आपके मन मस्तिष्क में ज्ञान, वो सपना नहीं, अभी भी तरोताजा बना हुआ है। चार दिन पहले आपने एक वर्णमाला अध्ययन किया, क ख ग पढ़ा कि कमल क, खड़ाऊं क, गणेश ग, घड़ी ग। अब एक हफ्ते के बाद आप आगे पढ़ते हैं, बोलते नहीं कि भाई कमल क पढ़ाया था, गणेश का पढ़ाया था। तो ज्ञान आपका सपना नहीं होता है, पदार्थ ही केवल भूत के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं, परंतु जो ज्ञान है वो चिन्मय है, वो कभी काल का ग्रास नहीं बनता है। तो यदि हम कुछ भी न करें, अपने मन को सिर्फ उलझाए रखें, किसमें उलझा कर रखें? वेदांत श्रवण में, वेदांत चिंतन में, तो अपने आप मलिन वासना दग्ध हो जाएगी और एक दिन आपके जीवन में उस आत्मक ज्योति, स्वयं ज्योति, परमात्मा की झलक मिल जाती है। तो आप खाली एक ही काम करना है, क्या काम करना है? जैसे कांटे से कांटे को निकालते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में शुद्ध वासना, वेदांत बद्ध श्रद्धा, इतना ही करना आपको। जो हमारी श्रद्धा है, अभी श्रद्धा कैसी, संसार बद्ध श्रद्धा है, वहां पर आपको अपने मन को चित्त को वेदांत बद्ध श्रद्धा करनी है। जब ऐसी श्रद्धा होगी तो अपने आप आपका मन चिंतन में डूब जाएगा। जब परमात्मा का चिंतन करते हैं तो सारी चिंता समाप्त, और दुनिया के चिंतन से हमारा शरीर चीता बन जाता है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।